अमर तेजी से जानवी की तरफ बढ़ा और फिर उसके हाथ से वो खाने की प्लेट लेते हुए बोला, खाना कहाँ लेकर जा रही थी तुम? अब तक तो तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। मुझे बाहर गए हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। जानवी ने जल्दी से कहा, मेरा मन नहीं है, मैं शाम को खा लूंगी, अभी नहीं खाना है मुझे। अमर ने गुस्से में आंखें बड़ी किए जानवी को देखा। वो बस बहाना ढूंढ रहा था उसे खाना खिलाने का, और अचानक ही उसने तेज आवाज में कहा, तुम इसीलिए खाना नहीं खा रही हो ना, ताकि बीमार होने का नाटक कर सको और उसके बाद तुम्हें घर का काम ना करना पड़े। पर आई एम रियली सॉरी बेबी, मैं तुम्हारी ये चालाकियां बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो चुपचाप यहाँ बैठो और ये खाना खत्म करो, और जब तक तुम ये खाना खत्म नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अमर की बात सुनकर जानवी की आंखों में नमी वापस लौट आई। वो मुश्किल से अपने गले से थूक निगलते हुए डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर बैठ गई। एक निवाला तोड़कर उसने जैसे ही अपने मुंह में रखा, उसकी आंखों के आंसू प्लेट के ऊपर ही गिरने लगे। जानवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे खाना खाने लगी। एक चपाती फिनिश होने में करीब 5 से 7 मिनट लग चुके थे। फिर उसने उम्मीद भरी नजरों से अमर को देखते हुए कहा, बस अमर, मुझे और भूख नहीं है, प्लीज आप जिद मत करिए। अमर ने गुस्से में टेबल पर अपने दोनों हाथ पटकते हुए कहा, ठीक है, जिद नहीं करूंगा, वैसे भी एक रोटी खा लेना, उसके बाद तुम मर नहीं जाओगी, छोड़ो ये खाना और जाकर बर्तन साफ करो। जानवी सिसक उठी, उसे अमर से इतनी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। फिर वो लगभग दौड़ते हुए किचन में चली गई। अमर भी उसके जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर घर से बाहर चला गया। जाते वक्त उसने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, ताकि चाहकर भी जानवी घर से बाहर न जा सके। अमर वापस फिर रावत मेंशन चला गया था, जानवी को वहां अकेला छोड़कर। पता नहीं क्यों अमर ये भूल गया था कि अद्वैत शेखर के अलावा भी उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, जो बस इसी ताक में रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले, अमर की किसी कमजोरी का पता चले और वो उसे अपना हथियार बनाकर अमर के खिलाफ इस्तेमाल करें। अमर के जाते ही कुछ दूरी पर खड़े एक लड़के ने किसी से फोन पर बातें करते हुए कहा, बॉस, अमर यहाँ से जा चुका है और वो लड़की इस वक्त घर में बिल्कुल अकेली है। अमर बाहर से दरवाजा भी बंद कर करके गया है, शायद उस लड़की से बेहद प्यार है उसे, इसीलिए बिल्कुल किसी हीरे की तरह संभाल कर रख रहा है। सामने से किसी आदमी ने जोर जोर से शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, मेरी सबसे बड़ी डील अमर रावत ने मुझसे छीन ली थी और अब मैं उसकी सबसे प्यारी चीज उससे छीन लूंगा, तुम वहीं रहो, मैं अपने आदमी भेजता हूँ। इतना बोलकर उस आदमी ने फोन कट किया और थोड़ी देर बाद वहाँ एक और गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से 4 लड़के निकलकर बाहर आए। उन चारों ने फार्म हाउस के सामने आकर उस बाहर खड़े लड़के को थम्स अप दिखाया, तो वो लड़का फुर्ती से वहां से चला गया और वो चारों लड़के फार्म हाउस के अंदर एंटर हो गए। जानवी, जो हॉल में सोफे पर बैठकर रो रही थी, उसे अचानक ही घर के बाहर इतने सारे कदमों की आहट हुई तो उसकी आंखों में उम्मीद आ गई कि वो अब इस घर से बाहर जा पाएगी, क्योंकि वो पिछले 15 मिनट से कोशिश कर रही थी दरवाजा खोलने की, क्योंकि उसे यहाँ बिल्कुल कैदियों वाली फीलिंग आ रही थी, पर बाहर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। जानवी लगभग दौड़ते हुए बाहर की तरफ गई और जल्दी से दरवाजा खोलते हुए बोली, अमर, थैंक गॉड तुम आ गए और तुमने दरवाजा खोल दिया। पर सामने खड़े लड़कों को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो घबराहट के मारे 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, तुम लोग कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें? अमर घर पर नहीं है, उनके आने के बाद आना। इतना बोलकर जानवी ने दरवाजा बंद करना चाहा, तो उनमें से 2 लड़कों ने दरवाजा पकड़ते हुए कहा, अरे भाभी जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? हमें अमर ने ही तो भेजा है आपका खास ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर मानो जानवी का सीना फटकर मुंह को आने को तैयार हो गया। उसने अमर से इस खिनौनी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। उसने जल्दी से नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे अमर ऐसे नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से, अगर अमर को पता चला तो वो तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बाकी बचे 2 लड़कों ने बिल्कुल शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, डायलॉगबाजी बहुत अच्छी कर लेती हो, पर अफसोस तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तो तुमसे नफरत करता है, इसीलिए तो उसने हम लोगों को भेजा है, ताकि हम तुमसे बहुत सारा प्यार कर पाएं। इतना बोलकर एक लड़के ने उसकी बाजू को पकड़ लिया, जिससे जानवी ने रोते हुए उसे खुद को छोड़ देने की गुहार लगानी शुरू कर दी। जानवी बुरी तरह बिलख रही थी, उसका दिल बहुत जोरों से घबरा रहा था, उसने आज से पहले ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था, इस वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक बाहर से एक गाड़ी रुकने की आवाज आई और उसमें से अद्वैत शेखर अपने कुर्ते की बाजू को ऊपर करते हुए तेज कदमों से चलकर अंदर आया। उसने जैसे ही देखा जानवी रो रही है और किसी ने उसे पकड़ रखा है, उसका खून मानो जलकर काला हो गया और वो गुस्से से गुर्राते हुए बोला, Who the hell are you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी महबूबा को छूने की? ये सुनकर उन चारों लड़कों ने घबराकर पीछे देखा और अद्वैत को देखकर आंखें बड़ी करके बोले, अद्वैत भाव, आप यहाँ? अद्वैत ने उसके पेट पर एक लात मारते हुए गुस्से से कहा, मैंने कहा उसका हाथ छोड़ो। चारों लड़के डर के मारे कांपने लगे थे और वो जानवी से लगभग 2 फुट की दूरी पर जाकर खड़े हो गए। एक ने तो डर के मारे पेंट भी गीली कर दी थी। वहीं जानवी जल्दी से अद्वैत के पीछे छुपते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अद्वैत ने उसका हाथ पकड़कर उसका सर सहलाते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है महबूबा, और तुम्हारा वो बेशरम पति कहाँ गया है तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर।